लगभग 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में आए थे, ब्रज में आए थे। तो जय चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे प्रयाग के तरफ से, वाराणसी के तरफ से। जब चैतन्य महाप्रभु मथुरा शहर को देखे, दूर से देखे, तो चैतन्य महाप्रभु ने पहला कार्य कृत किया था, मथुरा नगर को प्रणाम किया था दंडवत होकर। दंडवत प्रणाम, स्वयं भगवान थे लेकिन भगवान मथुरा नगर को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु मथुरा नगर में, मथुरा में प्रवेश किए। और प्रवेश करने के बाद चैतन्य महाप्रभु विश्राम घाट पर गए। कल आप लोग जहाँ संकल्प ले रहे थे, जमुना जी का आपने दर्शन किया, कुछ लोगों ने स्नान भी किया, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु गए। और चैतन्य महाप्रभु जमुना जी में विश्राम घाट पर स्नान किए। स्नान के बाद कुछ रुकने के बाद कुछ ब्राह्मणों से चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात हुई, उनके यहाँ रुके। और फिर चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान पर गए। जन्म स्थान पर जो मंदिर है, श्री विग्रह है, उस श्री विग्रह का नाम है केशव देव। नाम याद रखेंगे ना, बार बार हम लोग कहते हैं केशव देव, भगवान के ग्रेट ग्रैंड सन, प्रपौत्र बज्रनाथ द्वारा स्थापित वह श्री विग्रह था, उसी पर स्थापित, जन्म स्थान पर स्थापित था। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए, केशव देव जी का दर्शन किए। और केशव देव जी का दर्शन करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ किए। 84 कोस की परिक्रमा में जिस रास्ते से, जिस रूट से चैतन्य महाप्रभु भ्रमण किए थे, तो गौड़ीय वैष्णव लोग उस रास्ता को खोज निकाले हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि उसी रास्ते पर चलें। तो चैतन्य महाप्रभु विश्राम घाट पर स्नान किए, केशव देव जी का दर्शन किए। और केशव देव जी का दर्शन करने के लिए 84 कोस की यात्रा में प्रथम जिस वन की यात्रा चैतन्य महाप्रभु किए थे, वो मधुवन है, यहाँ आए थे चैतन्य महाप्रभु, यहाँ आए थे। हम संक्षेप में कथा में जैसे बता चुके हैं, संपूर्ण कथा को सम्यक रूप से जितना यथाधीतम यथामति जितना हम लोग समझ पाए हैं हम लोग, और जितना हम लोग ग्रहण कर पाए हैं, तो उसके अनुसार कथा को प्रस्तुत करेंगे। मैं यहाँ पर संक्षेप रूप में ध्रुव जी के विषय में बताता हूँ, उनके तपस्या के विषय में। जब ध्रुव महाराज, ध्रुव जी अपने घर से निकले थे, माता ने इतना ही बता दिया था कि बेटा, मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, भगवान की प्राप्ति जंगल में होती है, वन में होती है। तो घर से तो बाहर निकल गए ध्रुव महाराज, किस वन में जाना है पता नहीं था। वन में जाना है इतना ही पता था, किसी वन में जाना है। तो बाहर जब निकले तो नारद जी से उनकी मुलाकात हुई थी, और नारद जी ने उनको उपदेश दिया। और उपदेश देने के कहा था कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। श्लोक का अर्थ है, नारद जी ने कहा कि मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, बेटा तुम यहाँ से यदि सचमुच भजन का स्थान का चयन करना चाहते हो, किस स्थान पर बढ़िया से तुम्हारी भक्ति हो सकती है, तो तुम जाओ यमुनाया तटम, यमुना जी के तट पर भजन करने के लिए जाओ। समझते है ना, कहाँ जाना है?
यमुना
जी के तट पर। पहला नारद जी ने बताया कि बेटा तुम यमुना जी के तट पर जाओ। यमुना जी के तट का अर्थ क्या है? यमुनोत्री से यमुना जी निकलती है और प्रयाग तक जाती है, लगभग 1500 किलोमीटर का तट है दोनों तरफ। किस तट पर मैं जाऊं? समझते है ना, तट से क्या मतलब? यमुना जी तो बड़े तट, तो यमुनोत्री से चालू कर इलाहाबाद तक तट है, कहाँ जाना है हमको? ध्रुव महाराज ने पूछा होगा ना, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः, यमुना जी के तट पर जाओ और वहां पर भजन करो। तो ध्रुव महाराज ने यह जो मधुवन है जमुना जी के तट पर है, जिस बाजू से जमुना जी प्रवाहित होती है, थोड़े बाजू से, थोड़ी सी दूरी पर है, तो वहां जाओ और वहां क्या करना है, स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन कालिंद्या सल्लेशिवे। बेटा तुम यमुना जी के तट पर मधुबन में जाओ और पवित्र जल में, यमुना जी के पवित्र जल में, शुद्ध जल में तुमको क्या करना है, स्नान करना है। कितना बार? 6 महीने में 3 बार की रोज 3 बार। त्रिसवनम सुबह में मंगलारती से पूर्व, दोपहर में 12 बजे और फिर संध्या आरती से पूर्व। तो यहाँ पर नारद जी ने छोटे से बच्चे को, कितना बड़ा बच्चा था वो, 5 वर्ष का था, उसको कहते हैं तुमको 3 बार स्नान करना है, त्रिसवनम स्नान करना और भगवान के बालू से श्री विग्रह बनाना और भगवान की तुम पूजा करना, बेटा तपस्या कर। तो नारद जी ने, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नारद जी ने ध्रुव महाराज को इस मधुबन में भेजा था। आके चलते चलते, छोटा सा बच्चा था तो बहुत समय लग, महीनों लगा हुआ चलते 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 परिश्रम। यहाँ पर श्रीमद भागवतम में वर्णन किया गया है कि ध्रुव महाराज संध्या के समय यहाँ पहुंचे थे, दिन भर चलते, दिन भर में कई एक दिन सोते जागते चलते थे, जिस दिन पहुंचे थे तो संध्या के समय पहुंचे थे। तो आए ध्रुव महाराज तो पहला उन्होंने कृत्य किया, स्नान किया यमुना जी में। कल हम लोग गए थे ना, याद होगा ध्रुव घाट यमुना जी के, वहीं पर ध्रुव महाराज आए स्नान किए और इसके बाद 6 महीना है तो प्रतिदिन 3 बार वहीं स्नान करने जाते, यहाँ रहते थे स्नान करके आ। तो वहां पर स्नान किया, संध्या के समय था और यहाँ पर भागवतम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ताम्र विभावरिम, उस रात्रि को ध्रुव महाराज कुछ खाए नहीं, दिन भर रास्ता चले हैं, 5 वर्ष का बच्चा है, स्नान किया, स्नान करने के बाद खाली पेट सो गए। नियम है किसी तीर्थ में कोई व्यक्ति जाता है तो
मोबाइल बंद करो,
रात्रि को उपवास करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज उपवास करे, कुछ खाए नहीं, पानी जमुना जी का पी करो, छोटा सा बच्चा कहीं आई झाड़ियों में सो गए, सो गए। इसके बाद समाहित पर चरक महाराज बार बार कह रहे थे, समाहित चित से इंद्रियां लगी हुई हैं और मन भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। महाराज अच्छा शब्द का प्रयोग कर रहे थे, बागीचा में मन घूमता है, तो बागीचा में घूमना तो फिर भी ठीक है, कभी कभी सिनेमा हॉल के तरफ मन चला जाता है वो खराब है, बागीचा तो फिर भी पेड़ पौधा उतना खराब नहीं है, ठीक है महाराज। हम लोग का तो बागीचा में भी नहीं रहता है, कहीं और जगह चला जाता है। तो समाहित ध्रुव महाराज, इंद्रियां लगी हुई थी, जीव भगवान की जप में हाथ से कोई सेवा पूजा करते थे और मन पूरा पूरा भगवान में लगा हुआ था। परे चरत बढ़िया से परिचर्या में लगे हुए थे, भजन में लगे हुए थे। ऋषि आदेश न पुरुषम, ऋषि आदेश, महाराज जी बार बार कह रहे थे गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति होनी चाहिए, प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार भक्ति होनी चाहिए। तो ऋषि नारद जी ने जैसा जैसा बताया था उसके अनुसार भजन कर किए थे। हम जो कहना चाहते थे वो और भी थोड़ा सा कठिन हम लोगों को समझने में होती है। ध्रुव महाराज दूसरे दिन भजन चालू किए और त्रि रात अंते कपित्थ बद्रासन, एक दिन खा लिए तो दूसरी बार कम खाते, 3 दिन के बाद एक दिन खा लिए तो क्या खाते थे, बदरी बेर कुल और एक दूसरा कपित है, एक विशेष प्रकार का फल होता है,
हैं?
क्या
बंगला में कौन
सी कॉडबेल, एक दिन खाए कुल, एक दिन खाए कॉडबेल, 3 दिन, एक दिन खा लिए तो 3 दिन के बाद, अब बीच में 2 दिन नहीं खाना, नहीं खाते थे, 1 महीना तक ऐसा भजन किया उन्होंने और कपित है और बैर का फल खाते हैं। तो एक महीने में कितना बार भोजन किए होंगे? 10 बार, केवल 10 बार पूरे महीने में। आप लोग महीने में कितने बार भोजन करेंगे? 2 बार कर 60 टाइम आप करेंगे, 8 बार मूड़ी को छोड़कर। तो 3 रात्रि में 1 बार भोजन करते थे, एकदम लगे हुए थे। और जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तब 6 दिन पर 1 बार, 6 दिन पर 6 दिन सस्ते सस्ते दिने 6 दिन पर 1 बार। और क्या, जो पत्ता पीला होकर गिर पड़ता है ना, सूखा पत्ता गिरते थोड़ा सा नमी रहता है, तुरंत गिरता है, तो पत्ता खाते थे 6 दिन में 1 बार, खा लिया 6 दिन के लिए छुट्टी। तो दूसरे महीने में कितने बार खाए होंगे?
5 बार।
तो 10 और 5 15, 2 महीने में 15। तृतीय महीने में 9 महीना में 1 बार, सॉरी 9 दिन में 1 बार। और वह क्या खाते थे? पानी, पानी के लिए 1 बार, 3 बार नहीं, 1 दिन सुबह में पानी पी लिए, तब 9 दिन तक क्या भजन किए। तृतीय महीने के और चतुर्थ महीने में 12 दिन पर 1 बार, और क्या खाते थे? हवा, सांस ले लिया 1 बार। और दूसरा बार कब लेना है?
12वें दिन
में। यदि 15 तारीख को लिए होंगे, आज 15 तारीख है, तो दूसरा सांस कब लेंगे?
27 तारीख
गोवर्धन पूजा के दिन। क्या करें, हम तो मन से भी नहीं सोच सकते हैं, मन में भी नहीं घुस रहा है, ज्ञान उतर नहीं रहा, क्या कैसे। लेकिन आप लिखा गया भागवत में कि 12 दिन पर 1 दिन वायु भक्ष, वायु। चौथे महीने में, पांचवे महीने में, अब तक तो बैठ कर कर दे, खड़े हो गए एक पैर पर। छठवें महीने में भजन करना है, पांचवें महीने में करना है, तो एकदम खड़े हो गए ध्रुव महाराज, पर तो बैठते तो बैठना भी। और छठवें महीने में वायु भी बंद कर दी, सांस भी नहीं लेना। तो इस जगह पर ध्रुव महाराज तपस्या की हम लोग कथा को पूरी बहुत ऐसे 1.5-2 घंटे लग जाएगा, हम उतना समय मतलब आप लोग पास है नहीं है ना कि चालू कर रहे हैं आगे 500 वर्ष पूर्व ऐसे एग्जैक्ट तिथि है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर चैतन्य महाप्रभु का 500 वर्ष होगा। नेक्स्ट 12 साल में गए, 15 में शायद, 15 में 1915 में आप लोग उतने भाग्यशाली, अच्छा होता हम लोग भी उसी समय आए होते, लेकिन हम लोग 500 वर्ष पीछे हो गए। अच्छा होता नहीं हम लोग उनके साथ रहे होते, हम लोग भी करते, चैतन्य महापुरुष चलते हैं हम भी करें। हाँ, उतना इस देव पर संकेत करें कि हम लोग उतना सौभाग्यशाली तो नहीं है, लेकिन कम से कम चैतन्य महापुरुष श्री विग्रह के रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। अभी उपदेश आला कि नहीं हमको कहना चाहिए, लेकिन कह ही देता हूँ, तो अभी हम लोग चलते हैं, तो चैतन्य महापुरुष को आगे आगे चलने दीजिए, प्रभुपाद जी को आगे आगे चलने दीजिए, ठीक है। कहाँ है वो सीतापुरी प्रभु जी? हम समझ, शायद हमारे पास समय है तो बंगला में भी ध्रुव महाराज के सीतापुरी है ना, आइए। चिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नयाचे। महाराज इस बात को कह चुके कह रहे थे कि हे भगवान स्थानाभिलाषी, मैंने आपका भजन किया लेकिन मेरे हृदय में कसर यह दुख निग्रह रह ही जाएगा कि मैं समृद्ध राज्य की प्राप्ति के लिए भजन किया था। स्थानाभिलाषी, मैं निष्काम भजन नहीं किया था, शुद्ध भक्ति नहीं किया, सकाम मेरी भक्ति थी और आप हमको मिल गए, लेकिन हमारी भक्ति का जो पथ था वह आज तक कंटेमिनेटेड माना जाएगा कि मैंने सकाम स्थानाभिलाष में अपूर्ण राज्य चाहता था। स्थानाभिलाषी तपसिष स्वयं, लेकिन मेरा क्या समय राज्य चाहता था, उसके लिए मैंने भजन किया और मिल गया कौन, आप मिल गए, भगवान मिल गए। मैं आपके भजन के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए आपका भजन नहीं किया था, लेकिन मेरा सौभाग्य आप 6 महीने के अंदर, मैं अबोध बालक हूँ, 6 महीने के अंदर आप हमारे सामने आप प्रकट हो गए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुहिम। बड़े बड़े योगी लोग, महात्मा लोग जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति करते हैं, आप उनके ध्यान में भी सम्यक रूप से नहीं आते हैं, हजार हजार जन्मों तक लगे रहते हैं, संकादि ऋषि लोग, नारद जी लोग बड़े बड़े भजन में लगते हैं, उनके ध्यान पथ पर भी आप नहीं आ पाते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैंने सकाम भक्ति किया, शुद्ध भक्ति नहीं किया, फिर भी आप मुझके हमारे सामने प्रकट हो गए। अपनी तुलना करते हैं, मैं तो घर से निकला था, राज्य की तुलना फूटे कांच से, शीशा से कर रहे, कांच फूट जाता है तो फेंक दिया जाता है, तो मैं उसी को राज्य उसी तरह का है, उसका बड़ा महत्व देकर मैं उसने घूमने उसको खोजने के लिए घर से निकला था, लेकिन मेरा आज सौभाग्य है कि मुझको दिव्य रत्न पारस पत्थर चिंतामणि प्राप्त हो गई, आप मिल गए। आप लोग पारस पत्थर का कॉन्सेप्ट है ना, धारणा है, कैसे धारणा है, कैसे जानते हैं, देखे हैं पार्थक का बंगला बोलूं की है, एक मणि होता है जब उसे लोहा में टच करा देंगे, ऐसे टच कराएंगे तो सोना हो जाता है। आपके पास जो पत्थर है और हावड़ा स्टेशन पर टच करा दीजिए रेलवे ट्रक के, पूरे भारत वर्ष के जो लाइन है ना वो सोना हो जाएगा, कितना मूल्यवान होगा, मूल्य बहुत मूल्यवान होगा ना। लोहा को पत्थर बना देता, लोहा को सोना बना देता है, तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो कांच ढूंढ रहा था, हमको वो पारस पत्थर मिल गया चिंतामणि। इसलिए भगवान स्वामी कृतार्थ होते हैं, भगवान अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए बस हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे थे बार बार ऋषि देव, जो मांगो मैं देने के लिए, मेरे हाथों में खुजलाहट हो रहा है देने के लिए, मांगो ध्रुव, मैं देने के लिए ही आया हूँ, मेरा एकमात्र बिजनेस है यहाँ मधुमन में आने का, तुमका दर्शन करना और तुमको देने के लिए, संकोच मत करना, मैं लक्ष्मीपति हूँ, किसी चीज का अभाव नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य है, ऐसा नहीं कि तुम मांगने में संकोच करना कि शायद भगवान के पास नहीं होगा, सब कुछ है, लक्ष्मीपति में हूँ, लक्ष्मी सारी सप्लाई कर, मांगो मांगो उत्साह दे रहे थे, ले लो यह ले लो वह ले लो, वो कहते न मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, आप कहते मुझको कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थ अश्मी वरम नया से, हे भगवान आपसे मैं नहीं, हम तो भगवान निराश ही हो गए। अरे भगवान ने अपने तरफ से कह दिया कि बेटा पृथ्वी का सम्राट 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, पिता का उत्तराधिकार तुमको मिलेगा और राज्य समाप्त करने के बाद 36,000 राज्य शासन करने के बाद मैं तुमको बैकुंठ का ही एक अंग है ध्रुव लोक दिखा दिए भगवान, इधर आज रात्रि में आप लोग देखना यहाँ पर इधर दिखेगा ध्रुव लोक, अभी ध्रुव महाराज को देता है। तो जब भगवान जाने लगे तो ध्रुव महाराज को बड़ा ग्लानी हो रही थी, यदि मैं शुद्ध भक्ति किया होता तो यही रहता, लेकिन मैंने सकाम भक्ति किया इसलिए मुझे पुनः उसी पॉलिटिक्स में उसी राजनीति में लौटना पड़ा, जो पिता गोद में नहीं बैठाना चाहते थे उन्हीं के घर में, जो माँ हमको देखना नहीं चाहती थी मैं मर जाऊं उसी घर में रहना पड़ेगा। तो पहली माँ तो ध्रुव महाराज, और अभी वर्णन है पुराण ऐसे गरुड़ के कंधे पर बैठते हैं, लेकिन उसे क्या भगवान को पता लगा दोनों पैर एक तरफ करते हैं। और अब नहीं समझना चाहिए कि वो गरुड़ उड़ेंगे तो भगवान को गिरने का भय है, गिर नहीं सकते गरुड़ बढ़िया से। और जब गरुड़ जी उड़ान भरे, भगवान ने ऐसा संकेत किया कि भगवान के दोनों चरणों की छाया ध्रुव महाराज के सिर पर आया। ध्रुव महाराज को बड़ी खुशी हुई, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छाया जगत के जुड़ाए। तो हम लोग तो गाते हैं केवल, सचमुच वो चरणों की छाया ध्रुव महाराज के इस पर आया। और इसके बाद उड़ान तो उड़ान था, और जो ही वो छाया उनसे दूर हुआ, समय तो मैं ठीक कह रहा कह पा रहा हूँ ना, छाया माता जी देख रहे ठीक उसी तरह उतना आप किए रहे हो, सब हमें समझने में सहूलियत हो रही है। तो ऐसे भगवान का जो चरण का जो छाया पड़ा था ध्रुव महाराज का, अब जो चलने लगा दूर हो गया तो ध्रुव महाराज एकदम फेंटेड होकर गिर पड़े थे। हे भगवान, आपका चरण प्राप्त में हुआ, आप चरणों की छाया मुझे प्राप्त हुई, लेकिन मैंने चूंकि शुद्ध भक्ति नहीं किया, सकाम भक्ति किया था, राज्य के लिए भक्ति किया था, इसलिए मुझे पुनः वहां पर जाना पड़ा, फिर उसी पॉलिटिक्स में उसी राजनीति में राज्य शासन में जाना पड़ा। ध्रुव महाराज जितना दुख से घर से निकले थे उससे ज्यादा दुख था लौटते समय। पहले दुख था क्या था, हमको राज्य नहीं मिलेगा, और अब दुख क्या था कि हमको राज्य मिलेगा, शासन करना पड़ेगा। इसके हम लोग संपूर्ण कथा प्रयास करेंगे, हम भी दिन में पढ़ लेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा चिंतन कर लीजिएगा। और शाम को बैठते हैं तो आप ध्रुव महाराज के घर में, ध्रुव महाराज के तपस्थली में आ रहे हैं, तो ध्रुव महाराज को याद करेंगे सुबह शाम को प्रसादम के बाद। अब तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कौन सा घाट आएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग से वचन देता हूँ तो मैं ही थोड़ा देर तैयार कहूँगा, लेकिन और भी बहुत बढ़िया स्पीकर आए। तो मैं सोचता हूँ मेरी अपनी पर्सनल इच्छा है कि सीतापति प्रभु जी कुछ बंगला भाषा में, बहुत से बंगाल के भक्त हैं तो आप लोग बैठे रहेगा, हिंदी सब ऐसा नहीं कि बंगला में चल हुआ तो हिंदी वाले जाएंगे अथवा इंग्लिश वाले चले जाएंगे, नहीं सबको बैठना है और ज्यादा प्रभु जी समय नहीं लेते हैं।
नहीं तो हो गया